क्या आपने कभी जीवन में सोचा है कि आप जहां पर हैं वो आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के कारण ही है? दोस्तों, जरा सोच के देखिएगा, जीवन के किसी स्टेज पर आपने जो निर्णय लिया था, यदि उसकी बजाय कुछ और लिया होता तो आप जहां हैं वहां नहीं, कहीं और होते। हम सब अपने लिए गए डिसीजंस की एक लंबी श्रृंखला हैं और कुछ नहीं। जो भी हम फैसला लेते हैं उसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आज आपको भागवत पुराण की ऐसी ही एक कथा की ओर इशारा करवा रहा हूं। आइए जरा सुनते हैं, जिसका शीर्षक है बकासुर। किसी जमाने में हयग्रीव नाम का एक मनुष्य हुआ करता था। उसके बेटे का नाम था उत्कल। उत्कल एक बहुत ही शरारती बच्चा था, किसी की नहीं सुनता था, बस अपने मन की करता। ऐसे में एक दिन वो जाजली मुनि की कुटिया में घुस गया। ये तो बस एक बच्चे की शरारत थी, इतनी सी बात पर मुनि एक बच्चे को कुछ नहीं कहते। पर उत्कल जाजली मुनि की कुटिया में घुसकर रुका नहीं, वो उनके तालाब से मछलियां पकड़ करके उन्हें मारने लगा। मासूम मछलियों को इस तरह मरते देखकर जाजली मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध में जाजली मुनि ने उसे श्राप दिया और बोले, तुम एक बक के जैसे यानी कि एक बगुले के जैसे मछलियों को पकड़ रहे हो, इसलिए जाओ, तुम बक ही बन जाओगे। उत्कल को बुद्धि आई, उसे समझ में आया कि वो भयंकर अपराध कर चुका है। उसने जाजली मुनि से गिड़गिड़ा के माफी मांगी और अपने को शाप मुक्त करने को कहा। पर अब तो देर हो चुकी थी, शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता था। पर जाजली मुनि को रोते हुए उत्कल पर तरस आ गया। उत्कल जो कर चुका था उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही था। जाजली मुनि ने उत्कल को बताया कि बक तो वो बनेगा ही, पर ऐसा होना उसके लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि एक दिन स्वयं श्री कृष्ण ही उसका उद्धार करेंगे और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देंगे। एक पल में ही, जी हां दोस्तों, एक पल में ही श्राप वरदान बन चुका था। पर इस वरदान को होने में बहुत समय लगना था, बहुत लंबा समय बीता। एक दिन श्री कृष्ण और उनके थके हारे बाल ग्वाल अपने पशुओं को एक तालाब में जल पिला रहे थे। तभी दूर से उन्होंने एक बक को देखा। ये कोई साधारण बक नहीं था, देखने में बहुत ही विशाल, ऐसा जैसे कि किसी बहुत बड़े पहाड़ को काट करके उसे बनाया गया हो। ग्वालों ने उस बक को देखा, वो बक भी उन्हीं को देख रहा था। उसे देखकर सब डर गए, और डरना सही भी था, क्योंकि वो कोई साधारण बक नहीं, बहुत ही बड़ा असुर बकासुर था, जो श्री कृष्ण को मारने के इरादे से आया था। हुआ यह था कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक राक्षस भेजे थे और वो सब के सब मारे गए। इस कारण से कंस डरने लगा था। उसने अपने सभी मित्रों से सहायता की गुहार लगाई। तब बकासुर उसके पास आया और बोला कि वो कृष्ण को मार देगा। बकासुर की शक्ति के बारे में सब जानते थे और उससे डरते भी थे। कहते हैं कि बकासुर की चोंच इतनी तीखी थी कि सख्त से सख्त वस्तु को भी भेद सकती थी और उसमें हजारों हाथियों का बल था। बकासुर बहुत देर से कृष्ण पर आघात करने की प्रतीक्षा में था। जैसे ही वो हमला करने वाला था तो उसे ग्वालों ने देख लिया। बकासुर समझ गया कि अब वो और देर नहीं कर सकता। बिना कोई टाइम वेस्ट किए बकासुर ने आक्रमण कर दिया। झपट्टा मारते हुए उसने उसी समय श्री कृष्ण को निगल लिया। बाल ग्वाल तो पहले ही डरे हुए थे, कृष्ण के निगल जाने से तो उनका डर सारी सीमाओं को लांघ गया। सब चीखने चिल्लाने लगे, उनको लगा कि उनका प्रिय आज उनसे छूट जाएगा। चारों ओर हाहाकार मच चुका था। कृष्ण पर हमला अचानक हुआ था, पर जैसे ही उन्हें निगला गया वो चौकन्ने हो गए। निगल जाने के बाद जब कृष्ण बकासुर के तालू में पहुंचे तो पहले तो वो वहीं रुक गए और नीचे नहीं गए। उसके बाद अपनी योग माया से उन्होंने अपने को तपाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे और फिर एकदम से कृष्ण का तापमान बढ़ने लगा। थोड़ा बहुत सहने के बाद तापमान असहनीय हो चुका था। बकासुर का तालू जलने लगा। अब वो कृष्ण को ना ही निगल सकता था और ना ही उगल सकता था। बकासुर को लगा कि उगलने में ही समझदारी है। उसने पीड़ा में तड़पते हुए कई कोशिशों के बाद कृष्ण को अपने तालू से बाहर निकाल करके फेंक दिया। निगलने का ऑप्शन शायद खत्म हो चुका था। उस पर भी अभी बकासुर के पास उसकी भयंकर तीखी चोंच थी। उसने अपनी चोंच से कृष्ण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों में युद्ध होने लगा। बाल ग्वालों में अब थोड़ी आशा जग गई थी। कृष्ण उन्हें दिख रहे थे। दोनों में थोड़ी देर तक युद्ध चला। उसके बाद कृष्ण को लगा कि बहुत हो गया, अब इस युद्ध का अंत कर देना चाहिए। कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बकासुर की चोंचें पकड़ ली, फिर एक चोंच को अपने पैर से दबाया और अपने दोनों हाथों से दूसरी चोंच के दो टुकड़े कर दिए। ऐसा करते हुए बकासुर का मुंह दो हिस्सों में फट गया और वो उसी समय मारा गया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये वही उत्कल था जिसे श्राप मिला था। उसकी मछलियों को मारने की शरारत उसे कहां से कहां ले आई। वही श्राप जो आज वरदान बना, पर उसके होने में बहुत समय लगा। ऐसे ही, जी हां, ऐसे ही दोस्तों हमारे भी डिसीजंस होते हैं। इन्हीं निर्णयों और कर्मों के आधार पर हमारा आगे का जीवन डिसाइड होता है। जब भी आप कुछ करें ना, तो जरा सोच के देखें कि कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद आपका यह डिसीजन आपको कहां लेके जाएगा। आप देखिएगा, आपके डिसीजंस बेटर होने लगेंगे। आप केवल वो ही काम करेंगे जिनके दूरगामी परिणाम अच्छे हों। तो इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।